તારીખ 20/3/1998 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 449 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 630
નીચે છે ઉપર કા પેરેગ્રાફ હમારે સમાગમ કા અભી અંતરાય જાનકર નિરાશા કો પ્રાપ્ત હોના યોગ્ય હૈ તથાપિ વૈસા કરને મેં ઈશ્વર ઈચ્છા જાનકર સમાગમ કી કામના રખકર જીતના પરસ્પર મુમુક્ષુ ભાઈઓ કા સમાગમ હો સકે ઉતના કરે જીતને હો સકે ઉતની પ્રવૃત્તિ મેં વિરક્ત સત્પુરુષો કે ચરિત્ર ઓર માર્ગાનુસારી સુંદરદાસ કીર્તન કથા કબીર આદિ જીવો કે માર્ગાનુસારી વચન ઓર જિન વચન ઓર જિનકા ઉદ્દેશ મુખ્યતઃ આત્મા કો કહેને કા હૈ એસે ગ્રંથ વિચાર સાગર સુંદરદાસ કે ગ્રંથ હિન્દી કલાસદાસ કબીર અખા ઇત્યાદિ કે પત્ર ऐसे ग्रंथों का परिचय रखे और इन सब साधनों में मुख्य साधन तो श्री सतपुरुष का समागम पूरा पैराग्राफ का एक ही वाक्य है। क्या कहते हैं कि हमारे समागम का अभी अंतराय जानकर निराशा को प्राप्त होना योग्य है। क्या कहते हैं कि अभी हमारा समागम संभवित नहीं है तो उसमें अंतराय है और अंतराय में निराशा प्राप्त होना संभवित है योग्य भी है। उसका समाधान कैसे करें वो तो लिखा है, लेकिन जो भावना है समागम वो भावना तो समागम मिलते ही समाधान को प्राप्त होती है। भावना दूसरी चीज को स्वीकार नहीं करती, इसलिए निराशा आएगी तो ऐसे परिणाम तो वहाँ यथास्थान पे होने से योग्य है। निराशा में ऐसा परिणाम होता है, अरे देखो क्या प्रारब्ध है, समागम चाहते हुए भी नहीं मिल रहा है, ऐसे तो आशा फलित नहीं होती तो निराशा होती है। मैंने तो कोई हमें ही अंतराय डाला होगा, किसी के समागम में गुरु ने हमने अंतराय डाला हमें भी अंतराय ही दे में आता है, लेकिन वो भी पोसाता नहीं है तो निराशा आती है और पोसाना नहीं भी चाहिए और निराशा होनी योग्य भी है। तथापि वैसा करने में ईश्वर इच्छा जान, ईश्वर इच्छा माने क्या कि पूर्व कर्म, ईश्वर इच्छा में लोग जो समझते हैं वो बात नहीं है, इसलिए अवतरण चिन्ह इस शब्द के आगे रखा है। ऐसा कोई हमारा पूर्व कर्म है तो पूर्व कर्म में तो हमें ही ऐसे कर्म अपराध करके बांधे हैं, ऐसा जानना और जानकर समागम की कामना भी रखना, ऐसा नहीं कि समाधान हो गया तो समागम की कामना नहीं हो, वो बात नहीं होनी चाहिए, वो रख कर के समाधान है। समागम की कामना रख कर के जो समाधान है ऐसी बात है। और फिर परस्पर मुमुक्षुओं का जितना समागम हो सके उतना करें। हमारा समागम नहीं मिलता है तो सत्संग ही छोड़ देना वो बात नहीं है, क्योंकि वो छोड़ने से फिर संसार के कार्य में तो लग ही जाओगे। तो परस्पर मुमुक्षुओं को आपस में समागम करना चाहिए। वो भी जैसे कल चर्चा हुई थी उस प्रकार से कि सब अपने परिणामों के या अनुभव की चर्चा करें। सत्संग में अनुभव प्रधान विषय लें, जानकारी के विषय शास्त्र के विषय ऐसे नहीं लेकर के अपने अनुभव की चर्चा करें। और खास करके दोष कैसे निकाला जाए, निर्दोष कैसे हुआ जाए, कोई लक्षण थे जितना परस्पर मुमुक्षु भाइयों का समागम हो सके उतना करे, और जितनी हो सके उतनी प्रवृत्ति में विरक्तता रखें। हृदय की प्रवृत्ति भी आएगी, वो भी करनी होगी, तो उसमें रस नहीं लें, उसको कहते हैं विरक्तता। वो प्रयास होना चाहिए कि प्रवृत्ति में हमारा रस अधिक नहीं हो जाए, मंद रस से प्रवृत्ति करें, तीव्र रस से कोई प्रवृत्ति नहीं करें। जितनी हो सके उतनी विरक्तता रखें, इसका मतलब कि पुरुषार्थ भी है विरक्तता रखने में, निरसता रखने में पुरुषार्थ होना चाहिए। सांसारिक प्रवृत्ति में जितना रस आएगा उतना नुकसान होगा ही, वही कर्मबंध का स्वरूप है। भावबंध का अनुपात रस के अनुपात में है, अनुपात मैंने प्रमाण, जितना रस तीव्र प्रवृत्ति में उतना कर्मबंध भी तीव्र समझ लेना। इसलिए परमागमों में, समय सारादि परमागम में जीव के भाव के रस में, रस को ही तात्विक दृष्टि से बंध का स्वरूप बताया गया है। बंध क्या है कि रस वाले चिकने परिणाम जितने हैं उतना ही बंध है, बस कोई बंध का स्वरूप है। और जितना बंध यानी रस होता है उतना ही आत्मा आवरण को प्राप्त होता है। क्या होता है? आवरण को प्राप्त होता है। और जितना आवरण बढ़ता जाता है उतना ज्ञान कम होता है, पंचेंद्री में से चार इंद्री, तीन इंद्री, दो इंद्री, एक इंद्री जीव हो जाता है, और उतनी अशांति भी बढ़ती है, उतना दुख भी बढ़ता है। आवरण से दोनों बात बनती है, ज्ञान भी आवरित होता है और अशांति दुख भी बढ़ता है, दोनों बात होती है। અસંગની પંચેન્દ્રિય તક પતા નહીં ચાલતા, એ દુઃખ કિસ બાત કા હૈ, દુઃખ બહુત હૈ। और मन वाले संघनी प्राणी हैं उसमें भी तिर्यंचों को उतना पता नहीं चलता, मनुष्य में कुछेक को पता चलता है, बाकी बहुभाग पता नहीं चलता। लोग ऐसे कहते हैं कि देखो भाई हमको कोई प्रतिकूलता तो नहीं है, प्राय सब प्रकार की अनुकूलता है, फिर भी चैन नहीं पड़ता, बेचैनी सी रहा करती है। क्यों रहती है खुद नहीं पकड़ पाता। कारण वो है कि उन्होंने जब प्रवृत्ति की है संसार की तो बहुत रस ले लिया है। यही कारण से अशांति की परिणति तीव्र हो गई है और वो अशांति जीव भोगता है, पता नहीं चलता क्यों अशांति मुझे होती है, वो उसको खुद को पता नहीं चलता। हाँ देखो, ये वेस्टर्न कंट्रीज में लोगों के पास पैसे तो बहुत हैं, इनके मुकाबले में हमारा देश गरीब माना जाता है, गिना जाता है। ये परिस्थिति है हाँ, लेकिन वहाँ बेचैनी बहुत है, चैन नहीं पड़ता, नींद की गोली लेना पड़ता है। बहुभाग लोग सोते वक्त वाइन पीते हैं, दारू पीते हैं, नींद अच्छी आ जाए इसलिए। ये तो उन लोगों का खाने पीने का व्यवहार ही उल्टा है। हम लोग दिन में ज़्यादा खाते हैं, शाम को कम खाते हैं, वो लोग दिन में कम खाते हैं, रात को ज़्यादा खाते हैं। अब रात को और तो कोई परिश्रम है नहीं, प्रवृत्ति है नहीं, तो पाचन में तो चाहिए कुछ डाइजेस्टिव एजेंट चाहिए, तो फिर वाइन पीते हैं। एक तो ठंडा देश है, वाइन गर्म है, दूसरा हजम करने के लिए भी चाहिए, तीसरा नींद नहीं आती तो इसके लिए भी चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली बहुभाग लोग अपवाद को छोड़ करके सब पीते हैं। हमारे यहाँ से इंडियन लोग जाते हैं वो भी वो आदत में आ जाते हैं, वो लोग तो पीते ही हैं, वहाँ तो कोई बुरा माना ही नहीं जाता। हमारे देश में तो दारू पीना अच्छा नहीं, ऐसा कुछ विचार भी है, वहाँ तो वो विचार भी नहीं है। तो उन लोगों को अपनी बेचैनी पकड़ में नहीं आती, कई लोग पागल हो जाते हैं, कई लोगों को हाइपरटेंशन रहते हैं, हार्ट डिजीज हो जाते हैं, ज़्यादा ऐसे पीने वगैरह में मांस दारू में कैंसर बहुत होते हैं। कैंसर के केस वो स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं कि जो भी हैवी डिजीज़ है वहाँ ज़्यादा है, पागलपन के केस भी ज़्यादा है, हार्ट डिजीज के केस भी ज़्यादा है, कैंसर के केस भी ज़्यादा है। गुरुदेव की बीमारी के वक्त थोड़ा हमने बाहर के देशों में जानकारी मिली थी, स्विट्जरलैंड बहुत धनाढ्य देश है, 100 में से 20 आदमी को, 20 मनुष्य को कैंसर है। कितने 20%, हर 5 आदमी में एक आदमी सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ये हालत है, जबकि वो लोग खाने में पीने में बहुत परीक्षा करके बाहर की चीज़ों को आने देते हैं, क्वालिटी सुपीरियर रखते हैं, फ्रूट की, दूध की, अनाज की, कोई भी खाने की चीज़, फिर भी कैंसर है। तो उस सब बातों का भय तो आएगा ही आएगा जीव के परिणाम पर, वो भय बेचैनी नहीं कराएगा तो क्या कराएगा, बेचैनी होगी ही होगी। इसलिए जितना हो सके उतनी प्रवृत्ति में विरक्तता रखे और विरक्तता बिना समझदारी रहने वाली नहीं है, यथार्थ समझ से ही विरक्तता रह सकती है। इसके बिना, रसाई बिना रहेगा नहीं, क्योंकि प्रवृत्ति में तो लाभ माना है, लाभ नुकसान का हिसाब किताब तो मनुष्य हर जगह करता ही रहता है, तो रस क्यों नहीं आएगा। इसलिए यथार्थ समझ होवे तो ही विरक्तता रहेगी कि मेरे को पारमार्थिक नुकसान क्या है। एक अध्यात्म के प्रकरण में ही अशांति को नुकसान माना है और शांति को लाभ माना है, बाकी तो सारे जगत में लाभ नुकसान का की टर्मिनोलॉजी पैसों में ही है, और कोई बात में लाभ नुकसान नहीं देखा जाता, एक ही टर्म है। लेकिन यहाँ वो टर्म नहीं है, यहाँ तो अशांति हुई, हमने अपने आप को नुकसान किया, शांति है वो लाभ है, वो बात है। इसलिए विरक्तता रखने में जीव को शांति है, और जितना रस लेगा उतनी अशांति उसी वक्त भी है और भविष्य में भी है, वर्तमान और भविष्य दोनों खराब होता है। वो समझ भी नहीं कि मेरी आत्मशांति से ये हीन है, हीन मैंने नीच कक्षा, निचली क्वालिटी, तो मेरी आत्मशांति से ये विशेष नहीं है कि मैं शांति को गौण करके इसको प्रधानता दे दूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी उदय है वो मेरे से तो भिन्न नहीं है, भिन्न होने से उससे लाभ भी नहीं, उसके नुकसान भी नहीं है। भिन्न जानने में इसकी उपाधेयता भी नहीं रहेगी, तो उदासीनता सहित बनी रहेगी। ये सब हीन भिन्न उसमें ज्ञान ही काम करता है, और बिना ज्ञान तो उदासीनता रहने वाली। तो इस तरह से विरक्तता रखें, सत्पुरुषों के चरित्र को, सत्पुरुषों के चरित्र को विचार में लें। क्या सत्पुरुषों के चरित्र को स्मरण में लें, विचार में लें माने स्मरण में लें, वो लोग कैसे, रामचंद्र जी ने 17,500 वर्ष अयोध्या की गादी पे बैठ करके राज चलाया, जिसको राम राज्य बोलने में आता है आज भी। मैंने बहुत सुंदर ढंग से, बहुत विचक्षणता से उन्होंने शासन किया। तो फिर भी वो उसी भव में मुक्ति में गए, महाज्ञानी पुरुष थे, ज्ञानी पुरुष नहीं महाज्ञानी पुरुष थे। कैसे चलाया होगा राज, कैसे चलाया होगा, कितनी विरक्तता रही होगी, तो उसी भव में दीक्षा धारण करके वो मोक्ष में पहुंचे। बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो कोई राजा महाराजा होता है उसमें वैराग्य और विरक्तता देखी नहीं जाएगी, क्यों कि उसका रहन सहन वैभव युक्त होता है, खान पीन रहन सहन सब वैसे ही वैभवशाली होता है, कपड़े वपड़े सिंहासन नौकर चाकर सब वैसे ही होते हैं, उनका वैराग्य कैसे देखा जाए। पर अंतर्विरक्ति होती है, उनको रस नहीं होता। ज्ञानी ऐसा समझते हैं ऐसे हालत में कि ये तो चार दिन की भी चांदनी नहीं है, इसमें क्या रस लेना। हम यात्रा में जाते हैं, कोई अच्छी धर्मशाला में ठहरते हैं, कितना रस आता है, और वहाँ कोई दीवार में गड़बड़ी हो तो कोई रिपेयरिंग करा लेते हैं क्या, करने लग जाते क्या। अपने को सुबह आए शाम को तो जाना है, इसमें क्या रस ले। में अनित्यता का भान रस नहीं आने देता। ऐसे हमारे वर्तमान संजोग है, घर मकान परिवार आदि बिल्कुल अनित्य है। काल के महासागर में चार दिन की भी चांदनी नहीं है, भले 150 साल का आयुष होवे लेकिन चार दिन की भी चांदनी नहीं है, इसमें क्या रस लेना। और रस लेकर के कितना नुकसान करना है अपने आत्मा को, कितनी अशांति को भोगना है। तो ऐसा समझकर उन ज्ञानियों ने वैभवशाली हृदय में भी रस नहीं लिया। हमारे पास तो इसके मुकाबले में कुछ नहीं है। भरत चक्रवर्ती की तो बात ही छोड़ो, जबरदस्त पुरुषार्थ करते थे, और उतना पुरुषार्थ किया, छह खंड का अधिपति है, इतना बड़ा शासन चलाते हुए इतना विरक्त रहे कि मुनि दशा में अंतर्मुख में केवल ज्ञान को ले लिया। आते ही सातवें गुण स्थान में ध्यान में आत्म ध्यान में आए, निकले नहीं बाहर, कैसा पुरुषार्थ होगा। वैसे ही दिगंबर आमनाई में जो भी मनुष्य दीक्षा लेता है वह प्रतिज्ञा पचकान लेते हैं कि मैं सिद्धोपयोग में ही रहूंगा। क्या सिद्धोपयोग से बाहर नहीं रहूंगा, मैंने छठे गुण स्थान में आने की प्रतिज्ञा नहीं है। अनिवार्य रूप से अपने अयोग्यता से आ जाते हैं अलग बात है, ऐसा प्रतिज्ञा लीजिए। तो भरत महाराज ने तो प्रतिज्ञा का प्रतिपालन किया 100% के बाहर ही नहीं निकले। अभी तो अच्छे अच्छे पुरुषार्थ वाले बाहर निकल जाते हैं, इनके खुद पिताजी सुखदेव भगवान है। एक साल लगा, कितना केवल ज्ञान लेने में एक साल लगा। छह महीने में तो आहार का विकल्प आता था, आहार नहीं मिला तो दूसरा छह महीना मैं आहार लिया, फिर केवल ज्ञान हो गया। तो एक साल लगा, भरत महाराजा को एक घंटा भी नहीं लगा। ऐसे पुरुषार्थवान जीव भी हमारे पुराणों में, पुराण मैंने इतिहास में होते हैं, उनका स्मरण करना, उनके पुरुषार्थ का स्मरण करना। उदय तो उन लोगों को भी है, जबरदस्त उदय आता है, अंतर विरक्ति बहुत रहती है, भिन्नता है वो सबसे बड़ी बात है। परिणमन में उदय से भिन्नता रहती है, उदय भावों से भी भिन्नता रहती है, ये पुरुषार्थ की बहुत बड़ी बात है। ऐसे पुरुषार्थ रहने से रस तीव्र हो ही नहीं सकता। यानी अपना परमात्मा से कोई चीज रस लेने योग्य लगती नहीं, इतना रस आत्म शांति का, आत्मा का, आनंद का, इतना रस आता है, इससे बढ़कर कोई चीज जगत में है। ऐसे सत्पुरुष संतों के चरित्र का स्मरण करना और मार्गानुसार जीवों के वचन उनका भी परिचय रखें। मार्गानुसार जीवों में सुंदरदास हो गए, कवि प्रीतम हो गए, अखा भगत, मैंने अक्षय भगत उसको बोलते हैं, अखा भगत हो गए, कबीर जी हो गए, मीराबाई हो गए, नरसिंह मेहता हो गए, सब मार्गानुसार है, इनके वचनों का परिचय रखें। क्योंकि वो महात्मा थे, वो सब महात्मा थे, और जैन संप्रदाय में नहीं होते हुए भी उन लोगों के आत्मा में से आत्मिक भाव निकलते थे। भगवान जिनेश्वर देव का बोध डायरेक्ट प्राप्त होने के पुण्य उन लोगों के नहीं थे, फिर भी अंदर से उसकी आत्मा की पुकार ऐसी आती है, आती थी कि जैसे भगवान के बोध से आ सकती है। हाँ, दर्शन में तो ये थे, निष्कामता थे, निष्कामता बहुत मोटी बात है। અખાનું એક પદ છે, કરતા મટે તો તૂટે કર્મ, એ છે મહાભજનનો મર્મ। ભજન બધા ગમે એટલા હોય, આ મહાભજનનો મર્મ આ છે કે તું કરતા પણ છો, તું છો જીવ ને તું છો નાથ, તું પરમેશ્વર, એમ કહીને અખે ઝટકા હાથ। હવે મારે કંઈ કહેવું નથી, કહેવાનું હતું બધું મેં કહી દીધું, વાત પૂરી કરી મેં। કેટલું માર્મિક વાત કરે છે, ક્યાંથી નીકળી, કે આત્મભાવમાંથી નીકળેલી વાત છે, એટલે એને મહાત્મા કીધા છે। કૃપાળુદેવની ભક્તિ કરી છે 187 પુત્રમાં, કે આવા મહાત્માઓની ચરણ સેવા અમે તો કરીએ, એવો ભાવ આવે છે, કેમ કે એ પણ સત્પુરુષના ચરણમાં ઈચ્છે છે, એમ કરીને લીધું છે। યોગ્યતાઓની વિચિત્રતા આ જગતમાં બહુ છે, કોઈમાં કોઈ ગુણ ને કોઈ અવગુણ, કોઈમાં કોઈ ગુણ ને કોઈ અવગુણ, કોઈમાં કોઈ ગુણ ને કોઈ, એવી વિચિત્રતા છે અસંખ્ય પ્રકારની। એટલા માટે એ યોગ્યતા અયોગ્યતાની વિચિત્રતા થી કોઈ ક્રાઇટેરિયા નક્કી નથી થતો, કોણે શું કરવું, એનો કોઈ નિયમ નથી ઘડાતો, સિદ્ધાંત નથી ઘડાતો। ત્યારે કૃપાળુદેવે બહુ અનુભવના અંતે, એમના અનુભવ જ્ઞાનના અંતે એમણે એક વાત કરી કે આમાં તો સત્પુરુષ સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી। આ યોગ્યતા અયોગ્યતાને જ્ઞાની પુરુષ સમજી શકે અને એના લક્ષમાં આવે કે આને આમ કરવા જેવું છે ને આને આમ કરવા જેવું નથી, એનું હિત થવું તો જ્ઞાનીના લક્ષમાં છે, બાકી કોઈ નિયમ નથી। એટલા માટે એને જ્ઞાનીના ચરણમાં મૂક્યા છે અને સૌથી વિશેષ પાત્રતા સત્પુરુષ કે ચરણ કા ઈચ્છુક હૈ ઉનકો દી ગઈ હૈ। क्यों? कि उनको ऐसा महाविवेक आया कि इसके सिवा मेरा निबेड़ा नहीं है। जैसे कोई बड़ी बीमारी होती है तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन उसका ट्रीटमेंट चलता है, और आधे घंटे में उसका रीडिंग लिया जाता है कई प्रकार का, और उसका ट्रीटमेंट में फेरफार करना हो तो इमीडिएट किया जाता है। ये भवरोग है, ये तो सबसे बड़ी बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, तो अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन सबसे ज़्यादा उनको, वो तो कदम कदम पे भूल करता है जी, और खुद कहाँ भूल करता है स्वयं को मालूम नहीं पड़ता। इसलिए ये सब बात समझते हुए जीव को विवेक आता है कि मुझे ये सत्पुरुष के सूचना के बिना, मार्गदर्शन के बिना मेरा कल्याण होना संभवित। उनका परिचय रखना, उनके वचनों का भी परिचय रखना, कहने की जरूरत नहीं कि ज्ञानियों का वचन का परिचय रखना, वो तो कहने की जरूरत नहीं है। और जिनका उद्देश्य मुख्यतः आत्मा को कहने का है, ऐसे ग्रंथ मैंने अध्यात्म ग्रंथ में ही आत्मा आश्रयभूत तत्व है ऐसा बताया जाता है। भुजत्थम वसिदो खलु समाधि अवधि जीवो। आत्मा कहने का उद्देश्य में क्या है कि आश्रय करने लायक कोई है तो अपनी आत्मा ही है। ऐसे जो अध्यात्म ग्रंथ हैं, ऐसे ग्रंथों का परिचय रखें और इन सब साधनों में मुख्य साधन तो श्री सत्पुरुष का समागम को ही माने। ये मुख्य साधन है, बाकी तो ये नहीं होते हैं तो एक गौण रूप से ये साधन बताए गए हैं। मुख्य साधन तो वही है। क्यों कि ग्रंथ नहीं कहेगा कि पढ़ने में अर्थ का अनर्थ क्या कर दिया हमने, वो ग्रंथ नहीं बताएगा। और सही अर्थ हुआ, सही समझ हुई तो समझ का मान चढ़ेगा, वो भी ग्रंथ नहीं निकालेगा। तो मैं समझता हूँ ये बात आ गई, ये तो प्रत्येक सत्संग में ही वो बात निकलती है। और हमारे यहाँ तो गुरु क्या, मुमुक्षु भी हमारे दोष बताएं तो हमें उसको उपकार करना है। ये हमारा हमारी नीति होना चाहिए, ये हमारा नियम होना चाहिए। क्यों के झूठी प्रशंसा करने वाले तो बहुत मिलेंगे, सच्ची या झूठी कोई भी प्रशंसा करने वाले तो मिलेंगे, दोष दिखाने वाले नहीं मिलेंगे। तो भूल से भी कोई दोष दिखाए तो उपकारी मानना है, भूल से भी दूसरा परिणाम हमारा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि हमारा दोष नहीं होवे और दोष बताए तो अगले की भूल है, लेकिन उनको रिस्पॉन्स देना। आज हमारी भूल नहीं है तो भूल बताई, लेकिन अगर हम उसके उससे नाराज हो जाएंगे तो वो कल भूल है तो भी नहीं बताएगा, तो नुकसान तो हमको हो गया ना। इसलिए भले ही भूल नहीं हो, बताने की कृपा तो किया उसने, उपकार तो किया, ऐसा ले लो। इस तरह से तो कहने की तो बात ही अलग है, सत्पुरुष को माथे रखने की बात तो बहुत अलग है। मुमुक्ष में भी हमारी ये परिस्थिति आपस में रहे तो बहुत बहुत फायदा की बात है, वो फायदामंद बात रहेगी। और बहुत बहुत उपकारी माने, क्या थोड़ा नहीं माने, बहुत उपकारी माने। ये हमारी जनरल प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, सहज रूप से ऐसा ही हो गए, ऐसा हो जाना चाहिए। देखो कितना फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। तो मुख्य साधन तो सत्संग है, सत्समागम है, और उसमें भी सत्पुरुष का समागम है, वो मुख्य साधन है। हमारे समागम का अंतराय जानकर प्रमाद को अवकाश देना योग्य नहीं है कि चलो छुट्टी का दिन मिल गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे फनगढ़ में ये बात हमने देखी है कि आज गुरुदेव का प्रवचन नहीं, क्या है अष्टमी और पूनम और अमावस्या, दो अष्टमी एक पूनम और एक अमावस्या, एक महीने में चार दिन सुबह का प्रवचन नहीं रहता, उस दिन स्वाध्याय चले। गुरुदेव तो विराजमान रहते थे स्वाध्याय में भी, प्रवचन नहीं देते थे, सब बोलते थे गाते थे सब, वो मौन बैठते थे, लेकिन वो भी वही किताब सामने रख करके बहुभाग लोग दूसरे दूसरे करके कुटुंब के काम करने में निकल जाते। चलो आज व्याख्यान नहीं है ना, तो अपने को महानगर जा करके थोड़ा वो परचेस कर ले, वो निपटा ले। जैसे वैकेशन होते तो बच्चे लोग नहीं पढ़ते, ये हालत नहीं होनी चाहिए, ऐसी शिथिलता नहीं है। हम तो अष्टमी के दिन मालूम है कि आज गुरुदेव का प्रवचन नहीं है तो अक्सर जाते थे, क्योंकि प्रत्यक्ष बैठने को तो मिलता ना, प्रत्यक्ष दर्शन का लाभ होता है, और स्वाध्याय में हमको तो रस आता। कोई भी ग्रंथ के स्वाध्याय चलते, समय सार की या आत्मसिद्धि की या नियम सार, कोई भी, हमको तो रस भी बहुत आया है गाथा पढ़ते पढ़ते। हम तो निवृत्ति में प्रवृत्ति नहीं करते, कभी ढूंढते नहीं, चलो ये काम निपटा लो वो काम निपटा लो। छः दिन में काम निपटाना है सब, सातवां दिन सौंदर्य रिजल्ट, उसमें कोई फिरफार नहीं। कुछ भी व्यवहार के, व्यापार के, कुछ भी काम हो, छः दिन में कर लेना है। साथ में रवि संडे को अब नो अपॉइंटमेंट्स किसी को नहीं देना, पूरे सुबह से शाम तक वहीं रहना, वो कर लेते थे। तो ये प्रमाद है, दूसरा दूसरा काम करना वो प्रमाद है। तो चलो सत्संग में मिल रहा है तो दूसरा काम निपटा लें, ये नहीं होना चाहिए। प्रमाद को चित्त में अवकाश देना योग्य नहीं है, जगह ही नहीं देना। चित्त में मैंने परिणमन में और अभिप्राय में, दोनों में, चित्त का अर्थ दोनों होता है। अभिप्राय में भी वही बात होनी चाहिए, हमको शिथिल नहीं होना है। बराबर काम में लगे रहना है, हमारा समय बहुत अमूल्य है, एक पल भी हमको सावधानी से उतनी दरकार आए बिना आत्महित होता नहीं। क्या उतनी दरकार आए बिना आत्महित होता नहीं? समागम का अंतराय जानकर चित्त में प्रमाद को अवकाश देना योग्य नहीं है। परस्पर मुमुक्षु भाइयों का समागम अव्यवस्थित होने देना योग्य नहीं है। हमारा समागम नहीं है तो मुमुक्षुओं का जो समागम है वो भी नियमित व्यवस्थित ही रखना है, प्रमाद के कारण से उसमें फेरफार भी नहीं करने का है। ये परम सत्संग नहीं मिलता है तो चलो छोड़ो उसको, वो बात नहीं। कभी कभी तो इससे बहुत फायदा होता है, कभी कभी तो मुमुक्षु के समागम से बहुत फायदा होता है। कैसे? कि हमारे से आगे वाला का प्रत्यक्ष परिणाम वहां देखने का मौका मिलता है। सत्पुरुष तो वो बात को समझाएगा लेकिन उनका स्टेज अलग है, तो वो बात वहां दिखने को नहीं मिलेगी, जबकि यहाँ तो दिखने को मिलेगी। और प्रत्यक्षता का बोध जल्दी असर करता है, इस तरह से लेना है। परस्पर मुमुक्षु भाइयों के समागम को अव्यवस्थित होने देना योग्य नहीं है। निवृत्ति के क्षेत्र का प्रसंग न्यून होने देना योग्य नहीं है। अब हम नहीं है तो आप लोग निवृत्ति क्षेत्र में चले जाना है, सत्संग बढ़ाने के लिए, भावना बढ़ाने के लिए निवृत्ति क्षेत्र में जाना है, मुमुक्षु को जाना भी चाहिए, ऐसा लेते हैं, वो भी व्यवस्थित रहना है, उसमें कमी नहीं करना है। निवृत्ति क्षेत्र का प्रसंग न्यून होने देना, मैंने कम नहीं करना है। योग्य नहीं है। निवृत्ति क्षेत्र में जाने में, रहने में और प्रवृत्ति क्षेत्र में रहने में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। छोटा मोटा अंतर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। क्यों? कि एकदम उपयोग की निवृत्ति हो जाती है निवृत्ति क्षेत्र में, एक ही काम करने की बात है। यहाँ तो वो भी करना है और वो भी करना है। क्योंकि वहां एक लय से काम करने का मौका ज्यादा है, इसलिए निवृत्ति क्षेत्र में जाना ही चाहिए। कामना पूर्वक प्रवृत्ति योग्य नहीं है। कामना पूर्वक मैंने फल की आशा, ये बात तो अन्य मत में भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की वांछा मत करो, तुम्हारा अधिकार कार्य करने का है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। वहां तो क्या है, एक न्याय लिया है निष्कामता का, कि फल की इच्छा बिना प्रवृत्ति करो। हमारे यहाँ तो कर्तापने का ही निषेध है, हमारा जो न्याय है वो तो सुप्रीम क्वालिटी का है, वो बात है। लेकिन यहाँ जो मुमुक्षु को बात की है कि आपको उदय की प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, करने करे बिना चलेगा नहीं, ऐसी स्थिति में करनी पड़े तो ख्याल रखना फल की कामना मत करना। उदय आया है, ये चीज माथे आ गई है, करे बिना चलेगा नहीं, निपटाओ फल के वांछा किए बिना। फल की वांछा में कर्तृत्व आए बिना रहेगा नहीं, कर्तव्य बन जाएगा। फल की वांछा वाले को ये कर्तव्य बन जाएगा कि ये करना ही चाहिए, करना और करेंगे तो ही इसका फल मिलेगा। फल तो जो प्रारब्ध है उसी के अनुसार आएगा, वो क्या हमारा हाथ की बाजी तो है नहीं, ये हमारे सामने उदय आ गया है तो करना पड़ता है। करना पड़े अलग बात है, फल प्राप्ति के लिए करना है वो बात एकदम, और परिणाम चिकने हुए बिना रहेगा नहीं, रस आए बिना, कामना होगी तो रस आए बिना रहेगा नहीं। ऐसा विचार कर यथासंभव, 26 की साल में, 26 वर्ष की आयु में कितनी विचारधारा विशाल है, विशाल भी है और गहराई भी है, दोनों बात मिलती है। यहाँ से कलम हाथ में लेते हैं एक मुद्दे पे लिखने को, तो कितने पड़खे से लिखते हैं, वो उपयोग उनको चारे और फिर जाता है, सब पहलू से उनको हाईलाइट करते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अरे लगता लगता हमने चेकबुक न करवी पड़े, क्या रहे शब्दों बदलवाना पड़े, वर्ड रिप्लेसमेंट नहीं, सेंटेंस रिप्लेसमेंट नहीं, धारावाही। तो गांधी जी लिखते हैं इसके आत्मकथा, गांधी जी के गुरु थे ना, गांधी जी के गुरु थे, गांधी जी बहुत प्रभावित थे। આશ્ચર્યકારી. जिस उम्र में उन्होंने कुछ एक बातें लिखी हैं, शुरू में 17 साल 16 साल 15 साल, आश्चर्य की प्रतिमा देखो, बहुत आश्चर्यकारी बातें लिखी. ऐसे विचार कर यथासंभव अप्रमत्तता का, मैंने शिथिलता को छोड़ करके जितनी हो सके उतनी यथासंभव परस्पर के समागम का आराधन करना, अप्रमत्तता का मैंने बलवान रूप से कार्य करने का आराधन करना, जोर से कार्य करने का आराधन करना, परस्पर के समागम का आराधन करना, निवृत्ति क्षेत्र का आराधन करना और प्रवृत्ति की उदासीनता का आराधन करें, सबको लागू पड़ता है, सभी क्रिया में आराधना लागू पड़ता है. ऐसा करें जो प्रवृत्ति यहाँ उदय में है. अब अपने लिए लिखते हैं, खुद की बात लिखते हैं कि हमको जो प्रवृत्ति यहाँ उदय में है. बंबई से लिखा है ना चिट्ठी, बंबई से लिखी है. वह ऐसी है कि दूसरे द्वार से चले जाते हुए भी छोड़ी नहीं जा सकती. पिछले दरवाजे से भी हम भाग नहीं सकते, ऐसे कहते हैं. फ्रंट गेट से तो कोई जाने देंगे ही नहीं हमको, लेकिन हम चाहें कि पिछले दरवाजे से भाग जाएं. ये भी ऐसी भी ऐसा भी परिस्थिति नहीं है हमारी. इसलिए समाधान करते हैं कि वेदन करने योग्य है. ये पूर्व कर्म की सजा है, वो सजा हम भोग लें. क्या है सजा भोगने में, कितना रस आएगा? दवाई पीने में किसको रस आता है? कड़वी दवाई पीने में, लेकिन पीनी पड़ती है. ऐसे वेदन करने योग्य है, वो भी सम्यक प्रकार से वेदन करने योग्य है. वो तैयार है क्या? वेदन करने योग्य है, मैंने रस लेके नहीं, सम्यक प्रकार से मैंने भिन्न रह करके और अपना अपनी आराधना को छोड़े बिना, स्वरूप के श्रद्धा ज्ञान को छोड़े बिना हो सके उतना करना. अपने स्वरूप को छोड़ करके कुछ करना ही नहीं है, ये बात पक्की है. बेटा वेदन करने योग्य है, इसलिए उसका अनुसरण करते हैं, प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं. और लोग भी देखते हैं कि देखो डोरी बाजार में बैठे बैठे व्यापार करते हैं, बम्बई के झोरी बाजार में बैठे बैठे व्यापार करते थे. हम वो गद्दी देख के आए कहीं जहाँ बैठते थे अपना भगवान छगन छे ने, भगवान भुवन छे एमनो माड़ो छे ने, तांबा काठा एमां पहले मारे एक रूम में बेचता था कृपाणदेव. मैंने भजाभाई देखा था, भजाभाई लई गया था. मैंने कहा जुओ आ रूम में એમ ભેગા દે હતી કે આને બેઠા બેઠા વેપાર કરતા હતા. મને લઈ ગયા હતા એમને, ખબર ના મને કૃપાળદેવનો માટે વાત છે, લઈ ગયા હતા ત્યાં. એમનું બિલ્ડિંગ છે ભાવનગરમાં, તે ખબર છે. મારા મેં ખરીદી લીધો હશે અમુક ટાઈમ પહેલાં, મોટું પથ્થરનું બિલ્ડિંગ છે. શારદા રેસ્ટોરન્ટ છે ને, ઓલું ઇડલી ઢોસાનું બાજુમાં, એની બાજુનું જ બિલ્ડિંગ છે પથ્થરનું, કોર્નર ઉપર છે એની બાજુનું બિલ્ડિંગ છે. वो कहते हैं कि इसलिए उसका अनुसरण करते हैं। तथापि अव्यावाद स्थिति में जैसा का तैसा स्वास्थ्य है, उसमें कोई फर्क नहीं है, प्रवृत्ति करते हैं, व्यापार करते हैं, अंदर में जो स्वास्थ्य है, आत्मा का जो स्वास्थ्य है वो अस्वस्थ नहीं है, वो तो जैसा का वैसा ही। और शुभ योग में भी क्या, ये तो अशुभ योग है, व्यापार है वो तो अशुभ उपयोग है, अशुभ योग है, योग और उपयोग की प्रवृत्ति अशुभ है, अंदर का स्वास्थ्य जैसा का वैसा ही, उसमें कोई फर्क, दृष्टि विचलित तो नहीं होती और ज्ञान में कोई फर्क पड़ता नहीं। आज यह आठवां पत्र लिखते हैं, ये आठवां चार आखिर का पुस्तकालय आया है। वे सब आप सभी जिज्ञासु भाइयों को बारंबार विचार करने के लिए लिखे गए हैं। कृष्णदास भाई को लिखा है, मैं आप सभी मुमुक्षु इस पर विचार करें, बहुत सी बातें उसमें लिखी हैं, विचार कर रहे हैं। चित ऐसे उदय वाला कभी हो रहता है, कभी कभी ऐसी बातें सहज रूप से लिखने में आ जाए, ऐसा चित्त का प्रकार रह जाता है, तो ये बातें लिखी जाती हैं। यानी कोई हमारा प्लानिंग नहीं है, सहज चित चल गया, लिखा गया तो लिखा गया, नहीं लिखा गया तो नहीं लिखा गया। आज अनुक्रम से वैसा उदय होने से, ये लिखने का भी एक उदय भाव है, आज अनुक्रम से वैसा उदय होने से उस उदय के अनुसार लिखा है। आपको दो बात लिखने का विकल्प आया, वो भी एक हमारा उदय है, लिख दिया, सब लिख दिया। फिर आप क्या करोगे नहीं करोगे, हम उस झंझट में नहीं फंसते, लिख दिया तो लिख दिया, और आप देखो अपना काम देखो। हम तो अंगुली निर्देशन करके चले जाएंगे, चलते चलते अंगुली निर्देश कर देंगे, बात ऐसी है, देख लेना हम जा रहे हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। ज्ञानी सन्मार्ग पर चलते हैं पर अंगुली निर्देश करते जाते हैं, कि जिसको सन्मार्ग पर चलना हो तो हम दिशा सूचन करते हैं, वैसे चलो, बाकी हमको कोई लगाव है ही नहीं। हम सत्संग और निवृत्ति की कामना रखते हैं, हम खुद ही सत्संग की कामना रखते हैं, निवृत्ति की कामना हम रखते हैं, प्रवृत्ति में बैठे बैठे हम निवृत्ति की कामना रखते हैं, तो फिर आप सबको वह रखने योग्य है वो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, यानी कहने की भी आवश्यकता नहीं है कि आपको भी ऐसा होना चाहिए। हम व्यवहार में रहते हुए, इतना बड़ा व्यवसाय करते हुए, अल्प आरंभ को और अल्प परिग्रह को प्रारब्ध निवृत्ति रूप से चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा प्रारब्ध ऐसा हो, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह वाला, हम ऐसा चाहते हैं। प्रवृत्ति का फल तो चाहते ही नहीं, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, प्रवृत्ति करते हैं तो भी चाहते हैं, महान आरंभ और महान परिग्रह नहीं पढ़ते, नहीं चाहते हुए भी व्यवसाय बढ़ जाता है अलग बात है, क्योंकि हम इच्छा नहीं करते कि व्यापार को बढ़ाएं, व्यापार के वॉल्यूम को बढ़ाएं, प्रवृत्ति को बढ़ाएं, वो हम चाहते नहीं है, उल्टी बात है। संसार में व्यापारी लोग हैं वो व्यापार बढ़ाना ही चाहेंगे, ज्ञानी की बात होती है, हम नहीं चाहते। तो फिर आपको वैसा बर्ताव करना योग्य हो, इसमें कोई संशय करना योग्य नहीं है। समागम होने का नियमित समय लिखा जा सके ऐसा अभी नहीं सूझता, यही विनती। सुस्ता है तो लिख देता, सुस्ता नहीं है तो नहीं लिख रहे कि हम कब आएंगे, कब मिलेंगे, को भी कोई दिमाग में बात नहीं आती, कितनी सहजता है लिखने में, एक एक बात लिखने में। यही विनती है, यहाँ ये पत्र आज समाप्त होते हैं।